तो आज हम लोग बहुत ही विशेष वैष्णव भजन पे चर्चा करेंगे। ये भजन विशेष इसलिए है क्योंकि विशेष आचार्य के द्वारा रचित है। और ये विशेष आचार्य कौन है? कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, हमारे प्रभुपाद जी के द्वारा रचित ये भजन है, ये कविता है जिसपे हम आज चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये कविता 18 सितंबर 1965 में लिखी थी और कहाँ? बॉस्टन के बंदरगाह में, जब उनका जो जहाज है जलदूत बॉस्टन बंदरगाह को छूता है 17 सितंबर को, और वे 17 सितंबर को कैप्टन के साथ बाहर जाते हैं और बॉस्टन के शहर को देखते हैं, और जब वे अपने जहाज में वापस आते हैं तब 18 सितंबर को ये कविता वे लिखते हैं, और उसके बाद ऑफकोर्स वो जहाज न्यूयॉर्क की तरफ जाता है। तो ये जो कविता उन्होंने लिखी है इसमें उनके बहुत सुंदर आंतरिक भाव है, और कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, वहाँ की परिस्थिति के बारे में बताते हुए हृदय पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बनाइए, मुझे जो आप ये स्थान पे लेके आए हैं आप मुझे अपने कठपुतली के तरह, कठपुतली समझते हैं, पपेट के तरह आप मुझे उपयोग करें, मैं आपका हूँ और आपके मिशन के लिए मैं आया हूँ। तो बहुत ही सुंदर कविता है। एक्चुअली ये कविता लॉस्ट हो गई थी क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसके बारे में किसी को बताया नहीं था, लेकिन अमेरिका आने के बाद थोड़े साल के बाद एक शिष्य को ये मिलती है प्रभुपाद जी की डायरी में, बंगाली में हैंड रिटन, और उसके बाद अब ऑल ओवर सब डिवोटीज इस कविता को गाते हैं। तो आज हम लोग इस कविता में से एक एक लाइन गाएंगे और उसके भाव को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिकैप नए लोगों के लिए जो जानते नहीं है कि श्रील प्रभुपाद एक्चुअली इस जलदूत जहाज में आए कैसे और ये कविता उन्होंने लिखी क्यों, उनके भाव क्या थे, तो जो नहीं जानते उनके लिए शॉर्ट रिकैप, श्रील प्रभुपाद जी जो है वे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है और कलकत्ता में वे एक संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन से वे भक्त थे, उनके माता पिता भी भक्त थे, और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें बहुत ही इंटरेस्ट था डिफरेंट फिलॉसफीज़ के बारे में जानना, और जब वे बहुत ही छोटी उम्र के थे तब उन्होंने अपनी खुद की रथ यात्रा भी की थी, अपने सारे नेबरहुड में जितने भी बच्चे हैं उनको लेके आके उन्होंने रथ यात्रा भी की थी। और जब वे एक नवयुवक की आयु में आए तो उनके किसी मित्र ने कहा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे गुरु आए हैं, एक साधु आए हैं, एक सन्यासी आए हैं, मैं तुमको मिलवाता हूँ। तो प्रभुपाद जी काफ़ी रिलेक्टेंट थे, बोला कि बहुत सारे साधु मैंने देख लिए, सब धोखा देते हैं, मैं नहीं मिलना चाहता। तो उनके मित्र उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक साधु से तुम मिलो, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, ये सच्चे लगते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी उनको छत पे मिलते हैं, वहाँ पे वे क्लास दे रहे हैं और प्रभुपाद जी जाके उनसे बात करते हैं, और प्रभुपाद जी के साथ पहली मुलाकात में ही वो प्रभुपाद जी को बोल देते हैं कि आप जो है प्रचार करो दुनिया भर में कृष्ण प्रेम के बारे में प्रचार करो। और फिर प्रभुपाद जी उनसे तर्क करते हैं कि कृष्ण भक्ति के बारे में प्रचार करने के लिए ये अनुकूल समय नहीं है क्योंकि अभी भी भारत जो है वे अंग्रेजों के द्वारा रूल किया जा रहा है, हमें स्वतंत्रता के लिए पहले मेहनत करनी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, और ऐसे माहौल में कौन लेगा कृष्ण भक्ति और कौन आपकी बात को सीरियसली लेगा। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि ये मैसेज बहुत अर्जेंट है, ये आज़ादी कब होगी उसके बाद प्रचार करने के लिए रुक नहीं सकती है, ये अर्जेंट है। और फिर ये दोनों का जो है एक दो घंटा का तर्क होता है टू एंड फ्रो, एंड फाइनली प्रभुपाद जी को कन्विंस हो जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और वे जब नीचे उतरते हैं तो उनके मित्र पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लगा, तो प्रभुपाद जी बस एक वाक्य में बोलते हैं कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे पूरा जीवन इनको अंकित कर दूँ, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा है और दूसरा बच्चा होने वाला है, अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो मैं अपना पूरा जीवन इनको डेडिकेट कर देता, लेकिन अभी तो फिलहाल मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर प्रभुपाद जी जो है वे फार्मास्यूटिकल बिजनेस में थे, तो दवाइयाँ बेचते थे, तो उनका जो कलकत्ता में दुकान है वो चलता नहीं है। फिर वे अलाहाबाद में बिजनेस शुरू करते हैं, उसके बाद बॉम्बे में भी बिजनेस शुरू करते हैं। हर जगह लॉस हो जाता है, कोई ना कोई बाधाएं, कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस आ जाती है, फिर से अलाहाबाद में खोलते हैं। एक बार तो जो है उनका दुकान जल जाती है, कभी चोरी हो जाती है। और इस दौरान एक बार श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ वृंदावन टूर में भी जाते हैं, और वहाँ पे भी सब मंदिरों के दर्शन करने में रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी जो है अपने गुरु के पास बैठ के उनकी वाणी सुनते रहते हैं। और 1936 में फाइनली वे दीक्षा लेते हैं। इस बीच में भी वे गौड़ीय मत के कुछ ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को अलाहाबाद में मंदिर बनाने में भी काफ़ी, सेंटर खोलने में काफ़ी योगदान कर चुके थे। तो उनको दीक्षा दीजिए बोल के जब उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ऐसा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि इन्होंने हमें अलाहाबाद सेंटर के लिए मदद किया था, वे डोनर है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस बात को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छे से क्लास सुनता है और मैं उसको ज़रूर दीक्षा दूंगा। उनकी दीक्षा के बाद 1936 में एक बार उनको चिट्ठी लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उस चिट्ठी में वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम जो है इंग्लिश भाषा में प्रचार करो, बुक्स प्रचलित करो। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिखते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब उनका लिखा देखा था तब उन्होंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये कुछ भी लिखे तो इसको प्रिंट कर दो, ये बहुत अच्छा लिखते हैं, और उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। और फाइनली एक बार जब वे वृंदावन में मिले थे तब उन्होंने कहा था भी प्रभुपाद जी से कि आग लगने वाली है, क्योंकि गौड़ीय मठ में फाइटिंग शुरू हो गई थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद कौन नेक्स्ट हेड बनेगा। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से शेयर किया था कि आग लगने वाली है, अब क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन तुम्हें प्रचार करना है। और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गोलोक धाम जाने के बाद भी प्रभुपाद जी इस फाइटिंग में पड़े नहीं थे। गौड़ीय मठ में जो फाइटिंग्स हो रही थी वे अपने आप को दूर रखते थे। उसके बाद वे तो अपने फैमिली के साथ बिजी थे, दीक्षा लेने के बाद और भी सारी समस्या आ गई थी, बिजनेस भी सक्सेसफुल नहीं था, बड़ा बेटा भी किसी से शादी करना चाहता था लेकिन वो लड़की किसी और से शादी कर लेती है तो वो थोड़ा सा घर छोड़ के चला जाता है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, पत्नी भी सपोर्ट नहीं कर रही है भक्ति जीवन में, और उसको चाय पीने की आदत थी उनकी पत्नी को। तो एक बार प्रभुपाद जी ने जो 10 साल मेहनत करके भगवद गीता के मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार किए थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट को वो रद्दी वाले को बेच देती है कुछ चाय के बिस्किटों के लिए। प्रभुपाद जी उन्हें डांटते भी है और उन्हें पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें मैं चाहिए कि नहीं, या यू वांट मी और यू वांट टी पूछते हैं, और उनकी बीवी हंसते हुए बोलती है आई वांट टी। तो प्रभुपाद जी धीरे धीरे समझ जाते हैं कि मेरा जो मिशन है, मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश दिया है, मैं यहाँ शायद पूर्ण नहीं कर पाऊँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। फाइनली प्रभुपाद जी डिसाइड करते कि वे घर छोड़ के चले जाएंगे, और इसके पहले भी बहुत बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके सपने में आए थे, उन्हें संन्यास लेने के लिए कहा था सपने में, लेकिन उन्होंने तब सोचा था कि मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं ऐसे कैसे छोड़ के चला जाऊँ। और फाइनली श्री प्रभुपाद घर छोड़ देते हैं, और उसके बाद में वृंदावन में, दिल्ली में थोड़ी छोटी छोटी सी जो है 4 पेज के न्यूज़लेटर जैसा प्रिंटिंग करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और जिनको भी वो मिलते थे उनसे कहते थे कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ, मेरी मदद करिए। तो बहुत सारे लोगों से मिले थे, लेकिन आज तक सब बोलते थे कि हाँ मदद करेंगे, लेकिन कोई एक्चुअली मदद तो करता नहीं था। तो एक बार मथुरा में एक मिस्टर अग्रवाल से प्रभुपाद जी मिले थे और उनसे कहा था कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। अग्रवाल जी ने कहा था कि हाँ मेरा बेटा गोपाल जो है वहाँ इंजीनियर है, पेंसिल्वेनिया में है, मैं उनसे कहूँगा, वो ज़रूर आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने भी सोचा कि मैं तो ऐसे कितने लोगों को बोलता हूँ, ये सीरियस लेंगे बोल के उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद में प्रभुपाद जी को चिट्ठी आती है जहाँ पे लिखा रहता है कि आपका जो है स्पॉन्सरशिप अप्रूव हो गया है। प्रभुपाद जी को याद भी नहीं आता कि ये कौन है गोपाल अग्रवाल. फिर उन्हें याद आता है, अच्छा अच्छा मथुरा के मिस्टर अग्रवाल को मैंने बोला था. तो वे बहुत खुश हो जाते हैं. लेकिन अब जो है बहुत सारी दूसरी फॉर्मेलिटीज़ भी है, उनको विदेश जाना है तो टिकट की व्यवस्था करनी है, बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं. तो फाइनली प्रभुपाद जी को याद आता है कि सुमति मुरारजी जो एक स्किंदिया जहाज की शिपिंग कंपनी चलाती थी, वे प्रभुपाद जी को पसंद करती थी. प्रभुपाद जी से कुरुक्षेत्र में भी मिली थी. श्रील प्रभुपाद जी का भागवतम का प्रथम स्कंद का प्रिंटिंग का पैसा भी वो दे चुकी थी. तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि मैं उनसे जाके मिलता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वो मुझे एक फ्री टिकट दे दे. तो प्रभुपाद जी जाते हैं सुमति मुरारजी से मिलने के लिए. सुमति मुरारजी मना कर देती है. वो बोलती है आप काफ़ी वृद्ध हो चुके हो, आपके लिए वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, वहाँ ठंड ज़्यादा होती है. और वो जब मना कर देती है फिर भी प्रभुपाद जी हिम्मत नहीं हारते. वे उनके सेक्रेटरी चोक्सी को फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर से एक बार मेरा अपॉइंटमेंट करवा दो, मैं उन्हें कन्विंस करूँगा. हालांकि सुमति मुरारजी के जो असिस्टेंट थे चोक्सी, वे भी काफ़ी अप्रिहेंसिव थे कि इतने बूढ़े आदमी कैसे जाएंगे वहाँ पे, कैसे रहेंगे. तो प्रभुपाद जी जब उनको कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे थे और उनको ट्यूटोरियल्स भी दे रहे थे कि तुम अंदर में जाओ और सुमति मुरारजी को ऐसे बोलो कि ये काफ़ी एंथुजियास्टिक है और ये ज़रूर कुछ कर पाएंगे, इनको आप टिकट दे दो. तो फाइनली श्रील प्रभुपाद जी क्या करते थे, सुमति मुरारजी के ऑफिस जाने आने के लिए जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पर घंटों तक बैठे रहते थे. और एक बार जब सुमति मुरारजी अपनी ऑफिस से निकलती है तब वो देखती है कि वहाँ पे सीढ़ियों के पास प्रभुपाद बैठे हैं और वो पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो. तो बोलते हैं कि आपके सेक्रेटरी मुझे मिलने नहीं दे रहे और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. तो वे बोलती है आज तो बहुत देर हो गई, आप कल सुबह आइए, मैं पक्का आपसे बात करूँगी. दूसरे दिन सुबह जब प्रभुपाद जी उनके ऑफिस में जाते हैं तब वो जो है प्रभुपाद जी की रिक्वेस्ट से तंग आके, क्योंकि वो इतना फोर्स कर रहे हैं, वो फाइनली मान जाती है कि ठीक है अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक टिकट दूंगी. हालांकि वो जो जहाज की कंपनी चला रही थी वो कोई कस्टमर्स को ले जाने वाला जहाज नहीं था, वो एक सामान को लेने वाला, ले जाने वाला माने कार्गो शिप था जिसमें सामान ट्रांसफर होते हैं. तो उनके लिए कोई विशेष फैसिलिटीज नहीं थी कस्टमर्स को ले जाने के लिए. लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी के लिए एक छोटा सा कैबिन वे प्रोवाइड करते हैं और जो शिप के कैप्टन हैं अरुण पांड्या, वे इंडियन थे और उनको आइडिया थी कि कोई साधु जो है वो कैसे प्रकार का खाना खाते हैं, क्या करते हैं. तो उनको समझा बुझा के जो है वे उनको एक फ्री टिकट दे देते हैं. और उसके बाद में जब वो टिकट उनको मिल जाता है उसके बाद बहुत सारी और तैयारियां प्रभुपाद जी करते हैं, जैसे कि पी फॉर्म वगैरह भरना. प्रभुपाद जी काफ़ी बूढ़े थे, मदद करने के लिए कोई नहीं था, परिवार को छोड़ चुके थे. बहुत बार प्रभुपाद जी यहाँ वहाँ कभी गिर जाते थे, थक जाते थे, प्रसाद लेने के लिए भी पैसा नहीं होता था. और जो पैसा होता था उससे टिकट करते थे वृंदावन से दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि वो उनका जो बैक टू गॉड हेड न्यूज़लेटर या जो मैगजीन का हो वो प्रिंटिंग के लिए वो पैसा उपयोग पड़ेगा, इसलिए अपना प्रसाद जो है स्किप करते थे. एक बार तो चांदनी चौक में सन स्ट्रोक से वे नीचे भी गिर गए थे और तभी भी प्रभुपाद सोच रहे थे कि मैं अपने परिवारजन को, मुझे प्यार करने वाले सबको छोड़ छाड़ के मैं ये मिशन पर निकल चुका हूँ भगवान, और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, आप मेरे साथ है और मैं एक दिन जो मेरे गुरु के इंस्ट्रक्शन है उसको मैं ये करने के लिए पूर्ण करने की कोशिश करूंगा. तो फाइनली प्रभुपाद जी के पास रहने की जगह नहीं थी तो उन्हें सिंधिया कंपनी के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो जहाँ रहते थे उस कॉलोनी में, वहाँ पे प्रभुपाद जी को अकोमोडेशन देते हैं. बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है प्रभुपाद जी कंप्लीट करते हैं और फिर अगस्त 13 तारीख को वे कलकत्ता पहुँचते हैं और सुबह वहाँ से जो है वो जहाज में बैठते हैं. उनका छोटा बेटा वृंदावन चंद्र उन्हें छोड़ने के लिए आता है, उनको अच्छी इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने परिवार का ध्यान रखना, माँ का, दूसरे भाइयों का. और प्रभुपाद जी जो है जहाज पे चढ़ जाते हैं. और जब वे जहाज पे चढ़ जाते हैं, जहाज तो कार्गो शिप है, ऐसी कोई विशेष फैसिलिटीज तो है नहीं जहाज में, लेकिन कैप्टन काफ़ी अच्छे थे क्योंकि उन दिनों में तो मास ज़्यादा करके, जैसे विदेश जाने वाला जहाज होगा तो मांस खाने वाले ही ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के लिए विशेषतर कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध दही वगैरह लिया हुआ रहता है. और वहाँ पे उनको हार्ट अटैक आ जाता है दो बार और जब एक्चुअली जहाज शुरू होता है तब प्रोपा जी जो है डायरी लिखते हैं, रोज उनका दिन कैसा गया। अभी भी ये डायरी अवेलेबल है, हम लोग लेके पढ़ सकते हैं, जलदूता डायरी, जिसमें प्रोपा जी का हैंड रिटन हैंड राइटिंग हम देख सकते हैं, रोज रोज वो क्या लिखते थे। और शुरुआत के 10 दिन में प्रोपा जी लिखते हैं कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है, डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जब शिप श्रीलंका पहुंचती है कोलंबो, तब कैप्टन श्री प्रोपा जी को गाड़ी में थोड़ा बहुत कोलंबो घुमाते हैं और फिर जहाज पे चढ़ जाते हैं। वहाँ से जहाज कोचीन की तरफ जाता है और फिर वहाँ से जो है अटलांटिक में घुस जाता है। और पहले के 10 दिन तो बहुत बुरी तरह से जाते हैं, लेकिन उसके बाद भगवान कृष्ण श्री प्रोपा के सपने में आते हैं और सपने में श्री प्रोपा देखते हैं कि ठाकुर जी और उनके दूसरे दूसरे अवतार सब मिलके जो है इस जहाज को चला रहे हैं। और उसके बाद उन्हें बहुत सांत्वना मिलती है, सोचते हैं कि ये तो भगवान का इंडिकेशन है कि वो मेरे साथ है। और फिर जो जहाज के कैप्टन है अरुण पांड्या, वो भी प्रोपा जी को कहते हैं कि हम तो कितनी बार जहाज भारत से अमेरिका ले गए हैं, लेकिन ये जो समुद्र की लहरें होती है वे बहुत जो है तूफान जैसा होता है, और मैंने आज तक मेरे कैरियर में इतना शांत अटलांटिक ओशन नहीं देखा, कितने शांति से हम जा रहे हैं। और फिर प्रोपा जी हंसते हुए उन्हें कहते हैं कि इस जहाज को कृष्ण चला रहे हैं, तो मेरे लिए जो है उन्होंने लहर शांत कर दी है। तो उस तरह से वे फाइनली जो है अमेरिका पहुंच जाते हैं। और जब ये जहाज बोस्टन बंदरगाह पे आता है और पहली बार वे उतरते हैं, अमेरिका के पहले शहर को देखते हैं, और जब वे जहाज पे वापस घूम के आते हैं, तब इस कविता को श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो अब हम एक 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 लाइन को गाएंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। बड़ो कृपा कोइलो कृष्णा आधा मेरा प्रति, बड़ो कृपा कोइलो कृष्णा आधा मेरा प्रति, कि लागिया नीले हे तो करो ए बेगाती, बड़ो कृपा कोइलो कृष्णा आधा मेरा प्रति, बड़ो कृपा कोइलो कृष्णा आधा मेरा प्रति, कि लागिया नीलो हे तो करो ए बेगती, कि लागिया नीलो हे तया करो ए बेगती, बड़ो कृपा कोइलो कृष्णा आधा मेरा प्रति, बड़ो कृपा कोइलो कृष्णा आधा मेरा प्रति। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण को धन्यवाद बोल रहे हैं, बड़ो कृपा कोइलो कृष्ण आधा मेरा प्रति, बड़ो कृपा, बहुत बड़ी कृपा आपने की है कृष्ण मुझ पे, मुझे इस जगह में लाने के लिए, इस जगह पे जो आप मुझे अमेरिका लेके आए हो। अब कोई भी ये सोच सकता है, अच्छा श्रील प्रभुपाद जी को बहुत मजा आ रहा है, अमेरिका आ गया हूँ मैं, थैंक यू सो मच कृष्णा, मुझे आप अमेरिका लेके आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उनके मन में एक दुख था कि मेरे गुरु ने मुझे जो इंस्ट्रक्शन दिया मैं उसका पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बेबस हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास में फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं आ पाऊँ, कृष्णा आपने मेरे पे कृपा की, जो मुझे ये अवकाश आपने दिया, इस जगह में आप मुझे लेके आ गए हो जहाँ मैं अब मेरे गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दी है उसको पूर्ण कर पाऊंगा। गुरु से इंस्ट्रक्शन मिलना या गुरु से कोई आदेश मिलना मतलब कृपा है, गुरु का आदेश पालन करने का अवकाश मिलना मतलब कृपा है, और फाइनली गुरु के आदेश को अगर पालन कर पाए मतलब इज द अल्टीमेट स्पिरिचुअल लाइफ में हमें यही तो चाहिए। तो इसीलिए प्रोपा जी बोले बड़ो कृपा कह लो कृष्ण, मैं अपने आप से तो नहीं कर पाता था, मेरी इच्छा तो है कि मैं मेरे गुरु के आदेश का पालन करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था, आपने मुझ पे कृपा की और आप मुझे यहाँ पे लेके आ गए। और फिर बोलते अधम मेरे प्रति, अधम मैं एक यूजलेस फेलो हूँ और मुझे मेरे पे आपने कृपा की। अब प्रोपा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये उनका विनम्र भाव है, वो मन में सोच रहे हैं कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शन मिला था 1922 में कि तुम प्रचार करो, मैं 44 इयर्स लेट हो गया हूँ, मैं अभी 1965 में जा रहा हूँ तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ। प्रभुपाद जी हमेशा ऐसा सोचते थे, एक्चुअली वो तो प्योर डिवोटी है, लेकिन उनकी भावना ऐसी है, बहुत बार अपने शिष्यों को भी वो कहते थे कि मेरे गुरु महाराज बहुत बार मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम संन्यास लो, लेकिन मैं नहीं ले पाया, मैं माया में था। एक्चुअली प्रभुपाद जी का माया में होने का कुछ नहीं है, ये तो प्रभु भगवान का डिवाइन प्लान है, जब जाना है उनको तब ऐसी सिचुएशन उन्होंने बना दी। और एक कहते हैं ना प्रभुपाद जी की बायोग्राफी में, लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन, तो वो जो प्रिपरेशन हो रहा था वो भी व्यर्थ नहीं था। जैसे कभी कभी कोई जो लकड़हार होता है वह एक झाड़ को गिराना चाहता है, तो कभी कभी वो मारेगा भी अगर झाड़ को जोड़ से, तो पहले स्ट्रोक में शायद वो झाड़ ना भी टूटे, लेकिन 10 बार मारने के बाद में जो है वो झाड़ टूट जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कितना कब से टाइम वेस्ट कर रहा था, टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा था, वो जो इतना बार मार रहा था वो झाड़ वीक होता हुआ चला जा रहा था, और लास्ट टाइम जब जोड़ से मारता है तब वो झाड़ टूट जाता है। तो प्रभुपाद जी भी जो इतने साल जो है एक लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन, ये कोई समय नष्ट नहीं था, बस वे एक ग्राउंड बना रहे थे। और उनको मदद करने वाले भी जो है कृष्ण ने यहाँ वहाँ तैयार कर दिए थे, किसी ने लंदन में जन्म लिया तो किसी ने अमेरिका में, तो क्या बस सब इंतजार में थे कि अब प्रभुपाद जी आएंगे और ये जो भक्ति मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु का आगे बढ़ेगा। तो यहाँ बहुत ही विनम्र भाव से बोल रहे हैं कि मैं तो अधम हूँ, आप मुझ पे दया किए, मैं तो ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, मेरे गुरु ने कब कहा था और मैं बहुत लेट यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद में बोलते की लागिया आनीले है, तो किस लिए लाए आप, आनीले माले मुझे यहाँ पे आप किस लिए लेके आए, कुछ तो काम होगा, आप मुझे इस जगह में क्यों लेके आए। कोरो ए बेगति, अब आप जो बोलेंगे, आप जो चाहते हो मुझसे आप करवा लो, मैं पूरा पूरा आपको समर्पित हूँ। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद की भावना कितनी सुंदर है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, नाउ यू कैन डू वॉट एवर यू आर लाइक विथ मी। कृष्ण के पास एकदम समर्पण भाव, आप जो चाहते हैं मेरे साथ करिए, मैं आपका हूँ, आप मुझे कैसे उपयोग करेंगे आप मुझे उस तरह से उपयोग करिए। तो कितनी सुंदर बात, हमारे लिए भी एक समझने वाली बात है कि गुरु और कृष्ण के हाथ में हमें भी उस तरह का इंस्ट्रूमेंट बन जाना चाहिए, आप मुझे जिस तरह से सेवा में उपयोग करना चाहते हैं उस तरह से करिए। हालांकि हमारी भावना ऐसी होती है, वेदर सेवा हो या कुछ हो, हम खुद चूज़ करना चाहते हैं, हम काफ़ी सेलेक्टिव हो जाते हैं, हम हमारे कंफर्ट लेवल्स देखते हैं, लेकिन एक्चुअल सेवा का भाव ये होना चाहिए, कंप्लीट सरेंडर, आप मुझे जैसे उपयोग करना चाहते हैं वैसे आप मेरा उपयोग करिए। तो यहाँ पे एक सुंदर बात बोलते हैं, आई डू नॉट नो वाई यू हैव ब्रॉट मी, मैं नहीं जानता आप मुझे क्यों लेके आए। एक्चुअली ये कितनी सुंदर बात है, यहाँ पे प्रभुपाद जी कम्प्लीटली कृष्ण को क्रेडिट देते हैं उन्हें अमेरिका ले आने के लिए। कोई और होता तो बोलता कि मैंने भी बहुत मेहनत की है यहाँ आने के लिए, हजारों लोगों से बात की तो एक पर्सन क्लिक हुआ, तो इतने घंटे सुमति मुरारजी के ऑफिस में एक टिकट लेके आना, इतने लोगों को रिक्वेस्ट करना, फाइनेंसेस अरेंज करना, इतनी मेहनत से मैं आया हूँ, ऐसा भाव प्रभुपाद जी में नहीं है, आप लेके आए हो। जो भक्त है वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता, अपनी मेहनत के ऊपर फोकस नहीं करता, उसको क्या क्या बाधाओं को पार करना पड़ा भक्ति के लिए या सेवा के लिए वो नहीं गिनता, वो सिर्फ इतना देखता है कि कृष्ण की मुझ पे कितनी कृपा है, कितनी दया है, इतनी सारी बाधाओं को पार करने की शक्ति कृष्ण ने दी है। ये कितनी सुंदर बात है, हम अगर थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो हम गिना देते हैं, आपको पता है मैं 4 बजे उठा, फिर सोया भी नहीं, कितनी मेहनत किया, थक गया, 2 दिन से बुखार है, फिर भी मैं सेवा कर रहा हूँ, हम गिनाते हैं मैंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया आपके लिए। लेकिन यहाँ प्रभुपाद गिना नहीं रहे कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं आपके लिए आया नहीं, आप लेके आए, मैं क्या कर सकता हूँ, आप लेके आए। तो कितनी सुंदर बात यहाँ पे बोल रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि वे विदेश जाए, और क्योंकि भारत में वे ऑलरेडी कोशिश कर चुके थे लेकिन वे वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं विदेश में जाऊँगा, वहाँ प्रचार करूँगा, और अगर मैं वहाँ सक्सेसफुल हो गया तो भारतीय तो ऐसे ही विदेशी वालों की नकल करते हैं हर चीज़ में, उनके स्टाइल के कपड़े, उनके स्टाइल की खाना, उनके स्टाइल से बात करना, तो अगर विदेशियों को भक्त बना दिया तो अपने आप से जो है भारतीय भी उनका अनुकरण करेंगे, उनकी नकल करेंगे और वे भी भक्त बन जाएंगे। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पे, कि हे बड़ो कृपा कर लो कृष्णा, आपने मेरे पे इतनी कृपा की लागी यहाँ आने ले, मैं नहीं जानता आप मुझे किस लिए यहाँ पे लेके आए हो। से कभी कभी हम सोचते हैं कि जो भक्त बन जाता है शायद उसके लिए जिंदगी में हर चीज बहुत क्लियर होती होगी, इसके बाद में मुझे ये करना चाहिए, इसके बाद में मुझे ये करना चाहिए, शायद उसको कोई प्रकार की लाइट दिखती होगी जिसको वो फॉलो करता है। ऐसा नहीं है, भक्त के जीवन में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। डिफरेंस क्या है भक्त में और जो भक्त नहीं है, उसके जीवन में भी कन्फ्यूजन है, इसके जीवन में भी कन्फ्यूजन है, लेकिन भक्त निराशवादी नहीं होता है, वो हताश नहीं होता है, वो भगवान की सेवा कोई भी सिचुएशन में छोड़ना नहीं चाहता। शायद उसे भी समझ में नहीं आता है कभी कभी भगवान मुझे ऐसी परिस्थिति में क्यों डाले, इस प्रॉब्लम में क्यों डाल दिए, लेकिन उसको भगवान पे पूर्ण विश्वास होता है, वो कभी निराश नहीं होता और भगवान की सेवा कोई भी सिचुएशन में छोड़ता नहीं है। तो बोले की लागी लो, पता नहीं आप किस लिए मुझे जो यहाँ पे लेके आए, लेकिन जो भी है आप अभी जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, भगवान पे पूर्ण विश्वास। कितनी सुंदर बात, भगवान पे पूर्ण विश्वास, उसका मतलब कि यहाँ लाने के बाद भी क्या आप मुझे निमित्त बनाओगे इनको भक्त बनाने के लिए, या मुझे अनसक्सेसफुल कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कम्प्लीटली सरेंडर्ड हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी जैसे हम कोई सेवा लेते हैं, उस सेवा के लिए बहुत कष्ट करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल बुक डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी सेवा हो, हमारी एक साधारण एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मैंने इतनी सेवा की तो मुझे ये रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, मैंने इतनी सेवा की तो भगवान मुझे ये मदद तो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, आप मुझे यूज़ करेंगे मैं सक्सेसफुल होऊंगा तो भी ठीक है, मैं ना सक्सेसफुल हूँ तो भी ठीक है, आई एम रेडी टू सरेंडर टू योर प्लान। ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है। हमारी पूरी जिंदगी भगवान के प्लान को समझने में ही लग जाती है, क्या प्लान किया होगा भगवान ने, ऐसा या वैसा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी हमें अच्छी बात सिखाते हैं, भगवान के प्लान को समझने की कोशिश मत करो, उसको सिंपली फॉलो करो। समझना तो हम शायद जिंदगी भर नहीं समझ पाएंगे कि उनका प्लान क्या है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी सी ही है, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, उनके प्लान को सरेंडर कर सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम भगवान के प्लान को सरेंडर नहीं करना चाहते, इसलिए तो हमें भय लगता है ना, हमें भय लगता है। प्रभुपाद जी का नाम क्या था, अभय, अभय, जिसको भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अभय देने वाले भगवान के चरणार वृंद की जो है उन्होंने शेल्टर ली है, उन्होंने आश्रय लिया है। लेकिन हमारे जीवन में भय है, हम क्यों अभय नहीं बन पाते। एक्चुअली जो भगवान कृष्ण के चरण की शरणागति लेते हैं वो तो अपने आप से अभय हो जाते हैं, लेकिन हम तो नहीं हो रहे अभय, हम तो चांटिंग कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं बाहरी रूप से कि हम भगवान को सरेंडर्ड है, फिर भी अभय ये गुण हमें नहीं आ रहा है। अभय माने फियरलेस, हम फियरलेस नहीं बन पा रहे। क्यों? फियर चीज क्या है, फियर कैसे आता है? फियर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये है, द डिफरेंस बिटवीन कृष्णास प्लान एंड आवर प्लान इज फियर। समझ में आया? द डिफरेंस बिटवीन कृष्णास प्लान एंड आवर प्लान इज फियर। मेरा कुछ प्लान है, कृष्ण का कोई और प्लान है, मेरी चिंता ये है कि कहीं मेरा प्लान फ्लॉप ना हो जाए, कृष्ण का प्लान सक्सेसफुल ना हो जाए, इसलिए मैं डरती हूँ। लेकिन जिस दिन हमें ये सरेंडर आ जाए कि कृष्ण का प्लान जो है वो ही मेरा प्लान है, फिर तो भय नहीं लगेगा। हमें भय क्यों लगता है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मेरे को जॉब ना चला जाए, कहीं मेरे को ऐसा ना हो जाए। लेकिन जिसको भगवान पे पूर्ण विश्वास है उसे भला डर क्यों लगेगा, फेल अगर हो गया, मैंने तो मेरी पूरी मेहनत की है, तो भगवान का प्लान है, शायद वो ऐसा ही चाहते हैं, कहीं मेरा जॉब चला गया तो मैंने तो कोई गलती नहीं की है, लेकिन अगर वो भगवान का प्लान है तो ठीक है। जो हरि करे से मम हित, मम हित माने मेरे हित में ही भगवान जो भी करते हैं, मम हित मेरे हित के लिए। जिस दिन हमें इस बात पे विश्वास हो जाएगा, हमें भय लगेगा ही नहीं। भय तो उसको लगता है जो भगवान के प्लान पे पूर्ण विश्वास नहीं रखता। और यहाँ पे कितनी सुंदर बात, अब यहाँ क्योंकि प्रभुपाद जी के पहले उनके गॉड ब्रदर्स भी गए थे और वे अनसक्सेसफुल हुए थे, आई थिंक यूरोप या लंदन गए थे और वे नहीं कर पाए और वे वापस आ गए थे। तो अब प्रभुपाद जी के मन में भी ये होगा कि ऐसा नहीं कि बस मैं यहाँ पहुँच गया तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, शायद यहाँ पहुँचने के बाद मैं सक्सेसफुल ना भी हूँ, शायद मैं वापस लौट जाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। आप मुझे सक्सेस करो या मुझे अनसक्सेस करो, अब जो करवाएंगे करवा लो, आपका हूँ मैं। तो कितनी सुंदर बात, अगर हमारे जीवन में हम थोड़ा सा भी इस बात को अपना सके तो हमारा जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोले बड़ो कृपा कर लो कृष्णा अध मेरा प्रति की लागे ये न लहे तो करो एबे गति, आप किस लिए मुझे लेके आए है। सी ये बात करने का तरीका भी प्रभुपाद जी का इतना सुंदर और मीठा और रस से भरा हुआ है, वे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कृष्ण उनके मित्र है। किस लिए लेके आ गए मुझे यहाँ पे पता नहीं, लेकिन जिस लिए भी लेके आए हो तुम्हारी मर्जी। ये तो प्रभुपाद जी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कोई कर्ता भाव है ही नहीं, जैसे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसमें हमारा रोल ही नहीं है। जैसे कभी कभी छोटे बच्चे वो खेलते हैं ना ब्लाइंड फोल्ड, आँखों पे पट्टी बांध देते हैं, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे कि प्रभुपाद जी की आँखों पे पट्टी बांध के कृष्ण उनको यहाँ अमेरिका लेके आके छोड़ दिए है, और अब आँखों की पट्टी खोल के प्रभुपाद देख रहे कि कृष्ण आप यहाँ किस लिए लेके आ गए, जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है। हालांकि पूरा रास्ता वो ही मेहनत करते हुए आए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा कृष्ण पे डिपेंडेंट कि पता नहीं किस लिए लेके आए हो तुम यहाँ, मतलब कर्ता भाव जीरो, बिल्कुल कर्ता भाव नहीं है। कितनी सीखने वाली बात, हम तो छोटी छोटी सी बात में क्रेडिट लेना चाहते हैं। हमारी 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स इसीलिए होती है कि हम जो भी करते हैं हमें उसका क्रेडिट चाहिए, और क्योंकि हमें उसका क्रेडिट नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी काम अगर बिना क्रेडिट के, या हमें इसमें क्रेडिट की ज़रूरत नहीं, बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ करके देखो, उसमें इतना आनंद मिलता है क्योंकि उसमें कोई क्या बोलते कनेक्शंस नहीं है या कोई बॉन्डेज नहीं है, यू आर फ्री, बस आपको कुछ नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आपको कुछ चाहिए और आप करते हैं तो उसमें कभी कभी सुख मिलता है, कभी कभी दुख मिलता है, कभी कभी लोग आपको क्रेडिट देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ इसीलिए करो क्योंकि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ देना चाहते हो, तो कितना आनंद आता है। एक्सपेक्टेशंस के वजह से ही तो लोग दुखी होते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती है और कभी कभी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है। आप लोग सबको समझ में आ रहा है या क्लास थोड़ा सा हैवी है? ओके, बहुत सारी कहानियाँ और जोक्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छे फाइनर पॉइंट्स है इसमें। नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे।
आचे किचु काज तबे ए अनुमाने, आचे किचु काज तबे ए अनुमाने, आचे किचु काज तबे ए अनुमाने, आचे किचु काज तब ए अनुमाने, नहीं के नो आनी बेना ए उग्रस्ताने, नहीं के नो आनी बेना ए उग्रस्ताने, नहीं के नो आनी बेना ए उग्रस्ताने, आचे किचु काज तबे ए अनुमाने, आचे किचु काज तब ए अनुमाने,
बोल रहे आचे किचु काज तब ए अनुमाने, जरूर कुछ तो काम है, नहीं तो क्यों आप लेके आएंगे। आचे है किचु काज, कुछ तो काम है, ए अनुमाने आई एम गेसिंग, इसलिए आप मुझे यहाँ पे लेके आए होंगे, कुछ तो काम है। नहीं के नो आनी बेना ए उग्रस्थाने, नहीं तो ऐसी जगह में आप मुझे क्यों लेके आएंगे। अच्छा कैसी जगह है ये? उग्रस्थाने, उग्रस्थान है ये, ऐसी जगह में आप मुझे क्यों लेके आए हो। अब उग्रस्थान माने हमारी एक्सपेक्टेशन होगी, उग्रस्थान माने क्या, आप अगर कोई भी ये वर्ड यूज करे उग्र माने हम सोचते शायद खून खराबा, गंदा कचरा, शायद सब जगह ब्लड वर्ड पड़ा होगा, ऐसे ही कुछ हम सोचते हैं। लेकिन हालांकि जहाँ पे प्रभुपाद जी पहुँचे हैं बॉस्टन, जैसे वो अपना पैर वहाँ देते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग है, साफ सुथरा रोड है, बड़े बड़े होर्डिंग्स है, सुंदर सुंदर लोग हैं, और स्ट्रीट में बड़ी बड़ी लाइट्स है, इतनी सुंदर जगह है, और प्रभुपाद जी उसको बोलते उग्र स्थाने, ऐसे उग्र स्थान में आप मुझे क्यों लेके आए हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि इसमें उग्र क्या लग रहा है, इट्स सो ब्यूटीफुल, इसमें उग्र क्या है, क्योंकि प्रभुपाद जी शास्त्र चक्षु से देख रहे हैं। जब कोई शास्त्र चक्षु से देखता है तो उनको चीज़ें सटीक दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई लेडी रास्ते पर चल रही है और उसको कोई कुत्ता देखता है तो वो सोचता है कि ये मेरे खाने की चीज है, क्योंकि हड्डी है, कुत्ते तो हड्डी खाते हैं। कोई कामी पुरुष देखता है तो सोचता है ये मेरे एंजॉय करने की चीज है। कोई बच्चा देखता है तो सोचता है ये मेरी माँ है। एक ही पर्सन को तीन चार लोग जो देख रहे हैं वे अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं एक ही वस्तु को। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है, अगर हम अमेरिका देखें तो हम सोचते हैं वाओ कितना सुंदर है, और प्रभुपाद उसी अमेरिका को देख रहे हैं तो वे बोल रहे हैं उग्र स्थान, क्योंकि प्रभुपाद जी के लिए वो स्थान ही सुंदर है जो भगवान से कनेक्टेड है। जो स्थान सो जो जगह भगवान से डिसकनेक्टेड है उनके लिए वो उग्र स्थान है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोलते उग्र स्थान, ऐसी जगह में मुझे क्यों लेके आए जहाँ पे सब भगवान से डिसकनेक्टेड है। वो कैसे जगह से प्रभुपाद जी आए थे, वृंदावन से, जहाँ पे क्या होता है, आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं? वृंदावन जाएंगे तो क्या होगा, सब समय राधे 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 राधे, वहाँ पे सब कृष्ण के बारे में बोलते हैं, कंठी पहनी हुई है, सब तिलक में दिखाई देते हैं, झाड़ों पे भी राधे राधे लिखे हैं, सब जगह गाय है, मोर है, सब भगवान का नाम ले रहे हैं, यमुना की नदी है, गोवर्धन का पहाड़ है। कैसी जगह से वो कैसी जगह पे आ गए, यहाँ पे कोई कृष्ण को जानता नहीं है, सब माया में है। तो ऐसे उग्र स्थान में आप मुझे क्यों लेके आए हैं? प्रभुपाद जी बोले आज चे की चुकाज, भगवान आप तो बिना कारण के कुछ नहीं करवाते, जरूर इसमें भी आपका कोई मतलब होगा, कोई तो कारण होगा, नहीं तो ऐसी जगह में आप मुझे क्यों लेके आएंगे। अब हम सोच सकते हैं कि कृष्ण अगर प्रभुपाद जी से पूछते कि अच्छा कैसा स्थान है ये, उग्र स्थान क्यों है, तो उसका आंसर प्रभुपाद जी थर्ड उसमें देते हैं, थर्ड स्टैंजा में देते हैं कि क्यों है ये उग्र स्थान, क्या है इसमें क्वालिटीज स्थान में।
रजस्तमो गुण सबाई अचाना, रजस्तमो गुण सबाई अचाना, रजस्तमो गुण सबाई अचाना, सबाया छना, वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्ना, वासुदेव कथा रुचि नहीं से, वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्ना,
कैसी जगह है, बोल रहे रजस तम गुण से ढका हुआ ये जगह है, राजसिक और तामसिक गुणों से ढका हुआ है ये जगह। वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न, यहाँ पे मैं अगर वासुदेव की कथा, भगवान कृष्ण की कथा अगर किसी को बताऊंगा तो कोई खुश नहीं होगा, ना किसी को समझ में आएगा, ना किसी को आनंद मिलेगा। आप मुझे कैसे स्थान में लेके आए हैं, क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हियर इज कवर्ड बाय द मेटीरियल मोड्स ऑफ नेचर, यहाँ पे सब रजस तमस में डूबे हुए हैं, उनको भगवान की कथा में रुचि कैसे आएगी। भगवान की कथा में रुचि आने के लिए सबसे पहले जरूरत है कि हमारा हृदय क्लीन हो, है ना। जब हमारा हृदय क्लीन होता है, पवित्र होता है, तब हम भगवान की कथा को समझ सकते हैं, उसका आस्वादन कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि ये सब तो तमस और रजस से भरे हुए हैं, तो इनकी आपके इनको आपकी कथा समझ में नहीं आएगी। भगवान जैसे मैं बहुत बार बताती हूँ कि अगर कोई भिखारी कोई पात्र लेके आ गया और आप उनको कोई बहुत ही टेस्टी खीर दे दो जिसमें एलमंड्स है और इलायची है और गरम है और टेस्टी है, लेकिन अगर उस भिखारी का जो पात्र है उस पात्र में ऑलरेडी पहले की या दो दिन पुरानी सब्जी या चपाती पड़ी हुई होगी, तो उस पर आप अगर अपना खीर डालोगे तो उसको वो रुचि समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसका पात्र साफ नहीं है। तो यहाँ तो बोल रहे कि इनका पात्र तो रजस और तमस गुणों से भरा हुआ है, अगर मैं भगवान की कथा बताने की कोशिश भी करूँगी तो कथा में उनको रुचि नहीं आएगी, क्योंकि उनका पात्र ऑलरेडी रजस तमस से भरा हुआ है। तो क्या करना है उसके लिए, पहले तो उनके पात्र को साफ करना है। अगर उसको खीर की रुचि चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले जो उसने उस पात्र में लिया है उसको पहले धोना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सब ढके हुए हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी का एक पूरा मूड ऐसा है जिस तरह से कोई योद्धा का मूड होता है जब वो युद्ध करने जाता है, उसका एक पूरा स्ट्रैटेजी होता है, मैं कौन सा तलवार यूज़ करूँगा, मैं क्या यूज़ करूँगा, कैसे मैं उनको डिफीट करूँगा। तो यहाँ पे उनकी भी भगवान कृष्ण से यही वार्तालाप है कि मैं माया से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, युद्ध के लिए मेरे पास ये सारे औजार है, मैं तो युद्ध करूँगा, मैं तो तलवार से माया को जो है मर्डर करने की कोशिश तो करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये लोग सब कवच पहने हुए हैं। जब आप तलवार से युद्ध करते हो और सामने वाला अगर कवच लगा देता है तो आपका तलवार अंदर में घुसेगा नहीं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे मैं तो तलवार लेके आया हूँ, हरिनाम संकीर्तन लेके आया हूँ, लेकिन ये लोग जो है कवच पहन के बैठे हुए, वो कवच किस चीज़ का है, रजस और तमस का। तो मैं जो ये संदेश लेके आया हूँ कैसे जाएगा अंदर में, एक अब कवच पहने हुए है। तो यहाँ पे एक सुंदर बात अगर आप देखो, प्रभुपाद जी अब ऐसे सिचुएशन में है, दो दो हार्ट अटैक आ चुके हैं। अब बॉस्टन में जब वो उतरे हैं, सबसे पहले उनकी चिंता क्या होनी चाहिए थी, मुझे ये जो हार्ट अटैक आया है पहले मैं डॉक्टर से मिलूँ, कोई मेडिसिन ले लूँ, मैं नई जगह में आया हूँ, यहाँ पे मेरे को अकोमोडेशन ठीक से मिलेगा कि नहीं, मुझे रेस्ट लेने के लिए चांस मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे खाना मिलेगा कि नहीं, इंडियन फूड वेजिटेरियन फूड। हम जब कहीं जाते हैं सबसे पहले हमारी चिंता क्या होती है, मैं रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों ही हमारी चिंता होती है। कहीं भी जाओ, कोई हॉलिडे में जाओ, कोई दूसरे मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, प्रसाद मिलेगा कि नहीं, मैं रहूँगा कहाँ, मेरे कंफर्ट हूँ कि नहीं, मेरी हेल्थ कैसी है, बस यही चिंता होती है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रभुपाद जी बॉस्टन में उतर के उनको वो चिंता नहीं है, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं लिखा कि कृष्ण यहाँ मैं प्रसाद कैसे लूँगा, डिवोटी एसोसिएशन, उनको ये सब चिंता नहीं है, वो युद्ध के लिए आए हैं, मुझे तो अभी माया को मारना है, मारूंगा कैसे, ये सब कवच लेके बैठे हैं, उनको ये चिंता है, वो कृष्ण से ये बात कर रहे हैं। हालांकि उनकी उम्र का 70-year-old man तो सबसे पहले यही सोचेगा कि अब डॉक्टर कहाँ है, यहाँ मैं किससे मिलूँ, लेकिन वो कृष्ण से पूछते कि मैं क्या करूँगा, ये लोग तो कवच पहन के बैठे हैं, मेरी तलवार अंदर में कैसे घुसाऊँ। उसका सोल्यूशन भी प्रभुपाद खुद देते हैं नीचे के उसमें, क्या है उसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो उन्होंने बोल दिया कि आपने मुझ पर कृपा की, आप मुझे यहाँ लेके आए, ज़रूर उसके पीछे कोई कारण होगा। और फिर बोल देते हैं कि ये उग्र स्थान में आप लेके आए हो, ज़रूर उसके पीछे आपका कोई प्लान है। और उसके बाद में रहते लेकिन लेके तो आए हो, लेकिन यहाँ तो सब रजस तमस के कवच पहने हुए, मैं मेरी तलवार घुसाऊँ कैसे। फिर उसके बाद में प्रभुपाद जी सोल्यूशन देते, हाँ मेरे पास एक सोल्यूशन है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बोलते
तबे यदि तव कृपा होए अहे तू की, तबे यदि तव कृपा होए, तबे यदि तव कृपा होए अहे तू की, तव कृपा होए अहे, सकली संभव होए तुमी से कौतुकी, सकली संभव होए तुमी से कौतुकी,
अब सॉल्यूशन भी बोल दिया प्रभुपाद जी ने। बोलते सॉल्यूशन क्या है, तबे यदि तव कृपा, लेकिन ठाकुर जी अगर आपकी कृपा हो जाए तो कुछ भी पॉसिबल है, इनका हृदय आप साफ कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। कैसी कृपा चाहिए आपकी, अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा माने जैसे आप कोई दुकान में जाते हो, आप 10 रुपये देते हो, दुकान वाला आपको कुछ सामान देता है, लेकिन इमेजिन करिए आप दुकान में गए ही नहीं, लेकिन दुकान वाला ही बाहर आके इधर आओ ये लो तुम्हारा सामान, बोले कि भाई किस लिए दे रहे हो, इसको बोलते हैं कॉजलेस मर्सी, अहेतु की बिना कारण की कृपा। तो बोल रहे कि आपको तो इन पे बिना कारण की कृपा ही करनी है, क्योंकि उन्होंने कोई पुण्य तो किए नहीं, नहीं तो ऐसे उग्र स्थान में इनका जन्म होगा कैसे, जन्म हुआ कैसे उनका, उसका मतलब उन्होंने तो कोई पुण्य किए नहीं। अब आप अपनी कृपा अगर उनके कर दो, कॉजलेस बिना कारण की कृपा अगर आप उन पे दिखाओ तब कुछ हो सकता है। तो तवे तवे यदि तव कृपा, अगर आप कृपा करो, वो भी अहेतु की कॉजलेस, ऐसा नहीं कि जो जप करेगा उसी को या जो पुण्य करेगा उसी को, सबको अगर आप दे दो, सकली संभव होए तुम इसे कहते कि, क्योंकि आप जो है ठाकुर जी आप ऐसे ही हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बहुत शक्तिशाली हो। सी शक्तिशाली का मतलब यही नहीं है कि कोई भारी सी चीज़ उठा दो तो आप शक्तिशाली बन जाओ, जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा दिया, तो हम बोलते कृष्ण कितने शक्तिशाली है, उन्होंने गोवर्धन उठा दिया। शक्तिशाली का मतलब ये भी है कि आप किसी के जीवन को बदल सकते हो। जैसे इस उपनिषद के लास्ट के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कमेंट करते हैं कि कृष्ण इतने शक्तिशाली है कि वे एक एलिवेटेड ब्राह्मण को डॉग ईटर बना दे या कभी डिग्रेडेड डॉग ईटर को एलिवेटेड ब्राह्मण बना दे, वे कुछ भी कर सकते हैं। किसी कुत्ते के मांस खाने वाले आदमी को एक प्योर ब्राह्मण भी बना सकते हैं, और कभी कभी एक ब्राह्मण को भी नीचे गिरा सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, आप बहुत शक्तिशाली हो। तो शक्तिशाली का मतलब सिर्फ गिरिराज उठाना या राक्षसों का वध करना ही नहीं है। कृष्ण ऐसे शक्तिशाली है कि वो कभी भी किसी का भी जीवन बस ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। हम तो बहुत सारे भक्तों के जीवन में देखते हैं ना, कभी कभी ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन एक बार कृष्ण का नाम सुना, या तो कृष्ण का दर्शन किया, या तो कृष्ण की कथा सुनी, या तो कृष्ण के किसी भक्त के संपर्क में आए, और वंस एंड फॉर ऑल उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो यही तो हुआ ना, प्रभुपाद जी ने क्या किया, सबकी जिंदगी बदल दी। तो प्रभुपाद जी खुद का क्रेडिट नहीं बोले, आप अगर चाहो तो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो यूजलेस हूँ, आप अगर चाहो तो आप किसी की भी जिंदगी बदल सकते हो। जो बस सच भी है, कृष्ण के सिवाय कौन किसकी मदद कर सकता है। कभी कभी आप देखिए हमारे डिवोटीज जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में जाते हैं, सबको ये, बहुत सारे भक्तों को ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब हमें और भी क्लियरली समझ में आ जाता है कि हमारी मेहनत से कुछ नहीं होता। क्योंकि कभी कभी इतना मेहनत करते हैं, एक भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। कभी कभी बस आप बुक स्टॉल खोलो और कोई आके बोल देता है 10 गीता दे दो, 15 गीता दे दो, तब हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि एक्चुअली हम तो कुछ नहीं करते, हम सिर्फ हमारा एंडेवर लगाते हैं और कृष्ण जो है देखते हैं कि ये मेहनत कर रहा है और कभी कभी दया खा के हमें सक्सेस दे देता है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा कभी कभी चलने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, उठता है, गिर जाता है, तो शायद उसको तो अभी भी चलना नहीं आया, लेकिन माँ बाप उसका गिरना उठना देख के वे खुद ही भाग के उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि अरे आ जाओ मैं गोदी ले ले रहा हूँ। तो कभी 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 हम देखते हैं हमारे जीवन में भी हमारी मेहनत से तो कुछ नहीं होता है। भगवान की जब एक बुक डिस्ट्रीब्यूट होता है या कोई एक पर्सन एक गीता भी खरीदता है, उसके पीछे कृष्ण का ही हाथ है। क्योंकि सही टाइम पे कृष्ण जो उनके हृदय में परमात्मा के रूप में है, वे उसे इंस्पायर करते हैं, तुम जाओ इस किताब को ले लो। और जो भक्त डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके हृदय में भी कृष्ण इंस्पायर करते हैं, तुम जाओ ये जो बैठे हैं ना उनको ही तुम पूछो। नहीं तो कभी कभी हमें लगता है हम इसको क्यों पूछा, इतने लोग थे और इसको ही हमने पूछा। कभी कभी जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, कितने लोग चले जाते हैं आते हैं आपके स्टॉल के पास, और आप कभी किसी को पूछ लेते हो और संभव करेक्टली वो ही खरीद लेता है, उसका मतलब ये पूरा कृष्ण का अरेंजमेंट है। वो जिस क्रेडिट हमें देते हैं लेकिन काम पूरा कृष्ण ही करता है। जैसे महाभारत के युद्ध में वो कहानी आती है ना, उसका नाम मैं भूल गई, कौन है जिसका घटोजगज के बेटे का शीश काट देते हैं और फिर उसको एक पहाड़ पे रख देते हैं और वहाँ से वो पूरा युद्ध देखता है, और युद्ध खत्म होने के बाद में उसके पास जाके पूछते हैं कि तुमने युद्ध में क्या देखा, सबसे अच्छा युद्ध किसने लड़ा, और वो जोर जोर से हंसने लगा। तो बोला तुम हंस क्यों रहे, बोलते मैंने तो देखा कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा था, यहाँ से भी कृष्ण थे, वहां से भी कृष्ण थे, कृष्ण ही मार रहे थे, कृष्ण ही सब कुछ कर रहे थे, बाकी किसी का कोई रोल ही इसमें नहीं है। तो कृष्ण ही सब कुछ करवाते हैं, वे सिर्फ हमें क्रेडिट देते हैं। तो हमारी इच्छा है, सी हम सेवा में सबको बोलते हैं आइए सेवा करिए सेवा करिए, मतलब बोलने का मतलब ये है कि आइए क्रेडिट लीजिए, आप तो कुछ करेंगे नहीं, हम भी कुछ कर नहीं रहे, कर रहे हैं कृष्ण। अब जिसको क्रेडिट लेना है थोड़ा जल्दी जल्दी भागो और क्रेडिट ले लो, क्योंकि करने वाले हैं तो कृष्ण, आपको सिर्फ आपका नाम लिखवाना है कि मैंने किया। तो यही बात है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे कि आपकी अहेतु की कृपा अगर हो जाए तो आप सबका हृदय चेंज कर सकते हो, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी को भी बहुत बार कुछ लोग बोलते थे कि आप इतने बड़े संस्था के गुरु हैं, आप इतने बड़े साधु हैं। से एक्चुअली इंडिया में ऐसा मेंटालिटी है, साधु माने वे, उनका एक्सपेक्टेशन साधु से एक ही चीज़ का होता है, साधु माने आशीर्वाद देते रहो बस, और कुछ मत करो, हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी करो, हमारा भौतिक जीवन और भी आनंदमय बनाओ, हमारी जो 10 इच्छाएं हैं सारी पूरी हो जाए, बस यही चाहते हैं लोग। अगर साधु कभी कुछ और इंस्ट्रक्शन दे दे कि आप अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, तो उन्हें ऐसे साधु पसंद नहीं है। इंडिया में बस ये 2 टाइप के साधु पसंद है, एक जो आशीर्वाद देते रहे और एक जो आपके ऊपर में कोई एस्ट्रोलॉजी मतलब अभी देखो 10 दिन के बाद ये होने वाला है, 2 साल के बाद में आपको ये होने वाला है, बस ऐसा कुछ प्रेडिक्शन दे दे एस्ट्रोलॉजर्स, बस वैसे ही लोग उनको पसंद आते हैं। तो और कोई कुछ मैजिक दिखा दे यहाँ से या वहाँ से कुछ विभूति निकाल दे तो उनको लगता है कि बस यही सही साधु है। तो प्रभुपाद जी को भी बहुत सारे लोग पूछते थे कि प्रभुपाद जी आप कुछ मैजिक क्यों नहीं दिखाते। तो प्रभुपाद जी ने बोला कैसा मैजिक, बोलता जैसे बहुत सारे साधु है ये क्या तपस्या करते करते एकदम ऊपर उड़ जाते हैं, कभी कुछ पानी पे चलते हैं, कोई कुछ अंगूठी निकालता है, कोई एकदम हाथ खोलने से सोने की चेन आ जाती, आप भी कुछ मैजिक दिखाओ। तो प्रभुपाद जी हंसने लगा, बोला मैं तो उनसे भी ज्यादा बड़ा मैजिक दिखाया। तो बोला अच्छा अच्छा कौन सा हमने मिस कर दिया, आपने क्या मैजिक दिखाया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि गाय के मांस खाने वाले जो विदेशी लोग थे उनको सबको माथा मुंडवा के मैंने जो है एकदम प्योर वेजिटेरियन बना दिया। आज न प्याज खाते हैं, न लसन खाते हैं, न पैंट शर्ट पहनते, बेचारे 3:30 बजे उठ के ठंडे पानी में नहा के जप करते हैं, मंगलारती में आते, उससे बड़ा चमत्कार आपको क्या चाहिए। अंगूठी निकालना, ये यहाँ से विभूति निकालना, ये तो बहुत आसान है, किसी के जीवन को बदलना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्योंकि लोग तो आएंगे, आपका चमत्कार देखेंगे, ताली मारेंगे और चले जाएंगे। लेकिन आज के दिन में यहाँ जितने बैठे हैं, अगर हम किसी को भी बोले देखो आज से आप मांसाहार छोड़ दो, आज से आप टी कॉफी छोड़ दो, आज से आप प्याज लहसुन छोड़ दो, आज से आप पैंट शर्ट मैथ पहनो, कल से ऑफिस धोती कुर्ता में जाओ, नेक्स्ट संडे से आएंगे ही नहीं, बोले कि ये सब नहीं हो सकता। आप कुछ चमत्कार दिखाओ, अच्छी 2 बातें बोलो, 2-4 जोक करो, स्टोरी बोलो, हम सुनेंगे, हमें अच्छा लगा, बस हो गया, उतना ही। मंडे टू सैटरडे हमारी अपनी अलग ही लाइफस्टाइल है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनकी लाइफस्टाइल बदल दी। 365 days 24/7 उनको एक अलग पर्सन बना दिया, उनकी प्रायोरिटीज बदल दी, उनके जीवन का अर्थ पूरा बदल दिया। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। मैं मुझे याद नहीं अगर आप लोगों को मैंने एक कहानी बताई थी क्रेजी पीटर की, बताई है क्रेजी पीटर की कहानी, आपको पता नहीं। अमेरिका के एक इस्कॉन मंदिर में एक डिवोटी होया करता था पीटर, तो सारे उनको क्रेजी पीटर बोलते थे क्योंकि वे बहुत ही गंदी तरह से रहता था, अपने कपड़े ठीक से रखता नहीं था, यहाँ वहाँ फेंक देता था। और वो भी जो मंदिर का एंट्रेंस था उसके ऊपर में सीढ़ी थी जाने के लिए, तो वो छोटा सा सीढ़ी के नीचे की जगह में रहता था। तो बहुत बार सत्स्वरूप महाराज भी जाके प्रभुपाद जी को कंप्लेन किया कि इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है, बाहर की गेस्ट आते हैं देखेंगे मंदिर इतना गंदा है तो कितना बुरा सोचेंगे, इसको मंदिर से निकाल देते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला कि ऐसा मत करो, कितना मुश्किल से एक जीव भगवान के पास आता है। तो सारे उनको बैर कर रहे थे कि ठीक है चलो, जब प्रभुपाद जी ने बोला है तो हमको इन्हें बैर करना है। बहुत सालों के बाद जब प्रभुपाद जी भगवत धाम चले गए और उसके बाद में एक बार लॉस एंजलिस मंदिर में गुरु पूजा हो रही थी और क्रेजी पीटर वहीं खड़ा था और गिरिराज महाराज भी वहीं खड़े थे, वे घूमते घूमते उस मंदिर में आए थे। और गिरिराज जी महाराज ने जब दूर से इसको देखा तब उसने दूसरे डिवोटी को पूछा कि अरे क्रेजी पीटर अभी भी इस्कॉन में है, मुझे तो लगा कि उसने इस्कॉन छोड़ दिया होगा प्रभुपाद जी के जाने के बाद। तो फिर डिवोटिस ने पूछा कौन क्रेजी पीटर, बोला हाँ यही तो सबके सामने जो खड़ा हुआ है ये। और फिर डिवोटिस ने बोला क्रेजी पीटर, पीटर हमें तो पता नहीं, इनका नाम तो कुशाकृत प्रभु है, वे ही तो सारे जो भजन हम सुबह गाते हैं उसको संस्कृत से इंग्लिश में उन्होंने लिखा है। और तब गिरिराज महाराज ने सोचा क्या, ये तो हम सोचते थे कि ये क्रेजी है और ये आज इतना इम्पोर्टेंट सेवा कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने तो कैसे कैसे लोगों को भगवान की सेवा में जो है पूरा पूरा बदल डाला, तो ये तो सबसे बड़ा चमत्कार है। यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्ण को, तबे यदि तव कृपा होए अहेतु की, अगर आपकी कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। प्रभुपाद जी ने कैसे कैसे डिवोटीज को भगवान की सेवा में डाला ना। एक कॉलेज ड्रॉपआउट को प्रभुपाद जी ने, वो तो अभी कॉलेज से निकला हुआ है, प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम मेरे मैगजीन के एडिटर बन जाओ, और वो आज इतने सक्सेसफुल से प्रभुपाद जी के मैगजीन चला रहे थे। तो जिनमें कोई गुण नहीं है ऐसा भौतिक दृष्टि से लगता है, वैसे लोगों को भगवान की सेवा में प्रभुपाद जी ने लगा दिया। और वे कितने सक्सेसफुली हर चीज, कोई ऐसी जगह में, अब तो खैर इंटरनेट है, ग्लोबलाइजेशन है, अब लोग समझते हैं, आजकल तो लोगों को इंडियन फूड भी अच्छा लगता है, इंडियन योगा समझ में आता है। लेकिन उन दिनों में आप विचार करके देखिए 1965 में, बिल्कुल उन दिनों में इतना लोग यहाँ से वहाँ जाते भी नहीं थे, अब उन दिनों में प्रोपा जी बोले कैसे इनको समझ में आएगा कृष्ण रस चैतन्य महाप्रभु, ये सारी बड़ी बड़ी बातें उनको कैसे समझ में आएगी, प्रोपा जी पूछ रहे हैं। ए तो कृपा करो प्रभु करी निज वश, लेकिन आप अगर कृपा करेंगे तो हो सकता है, बस आप कुछ करिए। इनको रस किसी कीर्तन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलना ठीक है, किसी को प्रसाद लेने के लिए बोलो ठीक है, थोड़ा डांस वांस करते अच्छा लगता है तब तक ठीक है, लेकिन फिलॉसफी कैसे समझाए उनको, राइट। लेकिन प्रभुपाद जी ने किया ना, हमने तो देखा प्रभुपाद जी के जो पहले के लेक्चर्स थे उनमें भी प्रभुपाद बस यही बताते थे वृंदावन कृष्ण राधा रानी ये वो। इमेजिन जो क्राउड में बैठे उनको कृष्ण क्या है पता नहीं है, राधा रानी क्या है पता नहीं, ये क्या बोल रहे पता नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है इसलिए सुन रहे हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या बातें कर रहे, उनको पता भी नहीं है हु इज कृष्ण। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे कृष्ण को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी रस भरी बातें कैसे समझाऊंगा, अगर आप कृपा करेंगे तो ही हो सकता है। सी इमेजिन कोई एक बहुत ही क्या बोलते, मुझे हिंदी में बोलने में इतनी मुश्किल होती, कोई एक ऐसे गांव से आया है जिसमें कोई टीवी का कनेक्शन ना हो, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना हो, कोई आदिवासी गांव से आया हो, इमेजिन आप उसको शहर में लेके आ जाओ और शहर में कोई फुटबॉल का मैच दिखाओ, उसके मन में कैसा होगा कि भई ये फुटबॉल में एक गेंद के पीछे 11 जने क्यों भाग रहे हैं, सबको एक एक गेंद दे दो, एक गेंद में 11 जने क्यों फाइटिंग कर रहे हैं, सबको दे दो फाइटिंग खत्म। अब उसको हम कैसे समझाएं कि भैया ऐसा सबको गेंद देने से क्या मजा आएगा, बस यही तो मजा है कि एक गेंद के पीछे सारे लगे हो। अब उसको जिस तरह से हम समझा नहीं सकते क्योंकि उसने कब से पहले कभी फुटबॉल देखा नहीं है, उसको पता नहीं है इसमें क्या आनंद आता है। इमेजिन उस तरह से विदेशी लोगों को आप बताओ कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम गोलोक धाम गोलोक वृंदावन ये सब क्या बोल रहे हो, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले कि यहाँ कैसे मैं उनको वो सारी रसिक बातें बताऊं रासलीला की, या आप किस तरह से भक्तों को प्रेम करते हैं या गोपियों का प्रेम, ये सब उनको मैं कैसे बताऊं। तो बोले आप अगर कृपा करोगे, सी ये सारी रस भरी बात समझने के लिए चेतना भी तो निर्मल होनी चाहिए ना, हृदय भी तो शुद्ध होना चाहिए। बहुत बार इवन हमारे संडे प्रोग्राम में भी कोई नॉर्मल टॉपिक ले लो जिसमें हंसी मजाक है थोड़ा सा जोक्स है तो बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर कोई हायर टॉपिक आ जाए तो धीरे धीरे 10 मिनट में सारे उठ के बाहर चले जाते क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड बोल रहे। इमेजिन इंडिया में इंडियन हिंदू क्राउड में भी उतना समझ में नहीं आता, इतना भारी भरकम टॉपिक है, थोड़ा कुछ सिंपल बताइए। इमेजिन विदेश में कृष्ण रस के बारे में बात करने से उनको क्या समझ में आएगा। तो बोले कि अगर आपकी कृपा हो तो उनको समझ में आएगा। तो अब भगवान कृष्ण पूछ सकते हैं कि क्यों मेरी ही कृपा क्यों या मुझसे ही क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हो, उसका आंसर दे रहे प्रभुपाद।
तुम्हारा इच्छाए सब होए मायावास, तुम्हारा इच्छाए सब, तुम्हारा इच्छाए सब होए मायावास, तुम्हारा इच्छाए नाश मायार परास, तुम्हारा इच्छाए नाश मायार परास,
अगर भगवान पूछते मुझसे क्यों बोल रहे हो कि इनको माया से बचाओ, मुझसे क्यों बोल रहे हो, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले तुमसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, क्योंकि पूरी माया की रचना तो आपकी तो है, इसलिए तो आपको बोल रहे हैं। तुम्हारा इच्छाएं सब माया बास, आपकी वजह से तो सब माया में है, आपकी इच्छा के अनुसार, मतलब ये नहीं कि भगवान किसी को माया में डाल देते हैं, लेकिन माया भी तो भगवान के अधीन है, माया भी तो भगवान की ही शक्ति है। तो इसलिए प्रभुपाद बोले कि तुम्हारी इच्छा अल्टीमेट तो आप ही हो ना हर चीज के, माया भी तो आपकी शक्ति है ना। तुम्हारा इच्छा है नाश माया र परस, माया तुम्हारी शक्ति है और माया से अगर कोई निकलना चाहते तो भी तुम्हारा साथ ही होगा तभी माया से निकल सकता है, इसलिए आपको ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप कुछ करिए। बहुत बार बहुत सारे लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं माता जी माया में नहीं जाना चाहिए, हमें कृष्ण को प्रेम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात, भगवान ने माया बनाई क्यों? एक तो पहले खुद माया बनाते हैं, फिर बोलते हैं कि माया के पास मत जाओ, ये क्या लॉजिक है, फिर बनाओ ही मत, सिंपल बात है। तो मैं उनको बता रही थी एक सिंपल एग्जाम्पल समझने के लिए। अब आप जब एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर होता है एग्जाम में। अब क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। अब मल्टीपल चॉइसेस में चार आंसर अगर होते तो क्या चार आंसर सही होते हैं? एक आंसर सही होता है, तीन आंसर गलत होते हैं। अब क्वेश्चन पेपर कौन बनाता है? टीचर बनाती है। अब टीचर बनाती है तो टीचर क्या करती है? गलत आंसर भी टीचर ही देती है, सही आंसर भी टीचर ही देती है। लेकिन टीचर चाहती है कि आप सही आंसर को टिक करो, गलत को मत टिक करो। उस तरह से कृष्ण ही माया को बनाते हैं, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि आप माया को नो कहो और कृष्ण को यस कहो। सिंपल बात है। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने माया बनाई है मतलब वो चाहते हैं कि आप माया में रहो, या टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया है तो वो चाहती है कि आप रॉन्ग आंसर टिक करो और वो खुश हो जाएगी। उसको तो दुखी लगता है जब आप रॉन्ग आंसर टिक करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर टीचर ही बनाते हैं। तो माया भी कृष्ण की ही सृष्टि है, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि आप माया को टिक ना करो। तो यहाँ पे बोले माया तो तुम्हारी है, इसलिए माया से तुम ही निकाल सकते हो। जिस तरह से प्रोपा जी एग्जाम्पल देते थे कि जिस तरह से हम किसी अमीर आदमी के घर जाते हैं और बहुत सारे कुत्ते रखे हुए उन्होंने और कुत्ते भौंकते हैं, हम कितना भी कोशिश करें उस कुत्ते को हड्डी दे दे, खाना दे दे, चॉकलेट दे दे, वो कुत्ता नहीं मानेगा। लेकिन जब हम कुत्ते का जो ओनर्स है उनको बुलाएंगे, अरे शर्मा जी, अरे वो वर्मा जी, आइए आइए आपका कुत्ता भौंक रहा है, और वो जब बाहर आते हैं और कुत्ते पे हाथ रखते हैं तो कुत्ता क्या होता है? शांत हो जाता है, और फिर वो हमारे हाथ पकड़ के हमें घर के अंदर ले जाते हैं। तो प्रोपा जी बोलते बस ऐसे ही है, माया भी जो है वो कुत्तों की तरह ही है। हम कितना भी कोशिश करें माया से मुक्त होने के लिए हम नहीं हो सकते, लेकिन हम जब कृष्णा 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 चिल्लाते हैं तब क्या होता है? कृष्णा के माया को जो है एकदम शांत कर देते और हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे बस यही बात बोले, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा की वजह से सब माया में है। अगर तुम चाहो तो सबको माया से निकाल सकते हो। तुम ही तो हो, सबके हृदय में हो, और जो हृदय में है वही तो हृदय को बदल सकता है। तो तुम सबके हृदय में हो और सबके हृदय को तुम चेंज कर सकते हो। इसलिए क्या करोगे? जो माया में है, माया के वश में है, उसके ऊपर से माया की जो परस है उसको निकालोगे और तुम्हारे कंट्रोल में सबको ले लो। ब्रिंग देम अंडर योर क्लचेस। अभी माया के क्लच में है, आपके बस में उनको ले लो। नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। अगर भगवान पूछते हैं अच्छा क्यों ले लूं, क्या होगा अगर मैं उनको माया के वश से निकाल दूंगा तो क्या होगा, उसका नेक्स्ट आंसर कर रहे हैं। तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार, बुझीबे निश्चय तबे कथा से तोमार, तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार, बुझीबे निश्चय तबे कथा से तोमार। बोले भगवान अगर आपकी इच्छा हो तो इनका उद्धार हो जाएगा, और अगर इनका उद्धार हो जाएगा, आप अगर उनको पवित्र कर दोगे, आप उनको रजस तमस गुण से ढके हुए जो जीव है उनको वहाँ से मुक्त करोगे, उनको पवित्र बनाओगे, उनको माया के पास से दूर करोगे, तो क्या होगा? बुझीबे निश्चय तबे कथा से तुम्हारा, तुम्हारा ये जो मैसेज है जिसको मैं पकड़ के लाया हूँ फिर उनको क्लियरली समझ में आएगा। तो काइंडली आप जो है उनको माया से ये करो, आपका मैसेज। यहाँ भी प्रभुपाद जी का कोई कर्ता भाव नहीं, आपका मैसेज आपने भेजा, आप अगर चाहते कि वो समझे तो आप उनको ठीक कर दो, बस सब कुछ आप करो। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बस मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे हूँ, निमित्त मुझे उपयोग करिए, लेकिन आपका मैसेज जो है अगर आप चाहते हो कि वो समझे तो आप उनको माया से मुक्त करो। इसी यहाँ पे प्रभुपाद जी ये लोग मेरी भाषा कैसे समझेंगे, मेरा इंग्लिश थोड़ा इम्प्रूव कर दीजिए, मेरा वोकैबलरी इम्प्रूव कर दीजिए, मुझे थोड़ा इंटेलिजेंस दे दीजिए, कुछ भी नहीं मांग रहे। आप उनके हृदय में जाओ, आप हृदय साफ करो सो दैट आपका मैसेज वो समझ पाए। यहाँ पे कोई कर्ता भाव नहीं है। और फिर अगर भगवान पूछे कि अच्छा क्यों मेरा मैसेज सुनने से क्या होगा, कौन सा मैसेज, क्या मैसेज, तो यहाँ पे पूछ बता रहे कौन सा मैसेज।
भागवतेर कथा से ही तब अवतार, भागवतेर कथा से ही तब अवतार, भागवतेर कथा से ही तब अवतार। धीरा होए सुने जदि काने बार बार, धीरा होया सुने जदि काने बार बार,
तो अगर भगवान पूछ से प्रभुपाद जी को क्या मैसेज, तो बोले भागवतेर कथा, ये जो भागवत है क्यों भाई, भागवत का कथा ही क्यों, क्योंकि से तव अवतार, आप जो है इस कलयुग में आपके नाम के रूप में भागवत के रूप में आपने अवतार लिया है, तो अगर ये लोग भागवत की कथा सुनते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, धीर हो जाएंगे। जो भगवान के भागवत की वाणी कान में बार 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 सुनते हैं वो क्या हो जाता है, धीर हो जाते हैं। इसके दो मतलब निकल सकते हैं, जो धीर हो के भगवान के वाणी सुनते हैं उनको समझ में आता है, और या ऐसा भी मतलब ले सकते हैं कि जो बार बार कान दे के भगवान की वाणी सुनते हैं वो धीरे धीरे धीर हो जाते हैं। धीर हो जाते माने सोबर हो जाते हैं, सोबर हो जाते माने हर परिस्थिति को फेस करने की शक्ति उनमें आ जाती है। तो बोलते इसलिए मैं चाहता हूँ कि वे आपकी कथा सुने। आपकी कथा सुनना है तो हृदय पवित्र होना है, हृदय पवित्र होना है तो क्या करना है, रजस तमस के गुणों से मुक्त करना है, और रजस तमस के गुणों से मुक्त करना है माने माया के पास से उनको दूर करना है। माया के पास से कौन निकाल सकता है, आप। अब नेक्स्ट प्रभुपा जी उनके भजन के बीच में बहुत सारे श्लोक लगा देते हैं भागवत के, क्यों लगाते हैं, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं भागवत कथा सुनने का इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे एक श्लोक लगाते हैं, श्रीनवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हि अभद्राणी विधुनोति सुहृत् सतम, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैस्तिकी, तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एते अनाविधं स्थितं सात्वे प्रसीदति, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते, विदयते हृदया ग्रंथे छीदयन्ते सर्व संशया, शियन्ति चस्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वर। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक बोल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि क्यों मैं चाहता हूं कि वे आपकी कथा सुने, भागवत कथा सुने, क्योंकि जो भागवत की कथा सुनते हैं धीरे धीरे क्या होता है, उनका हृदय पवित्र होता है। भागवत में ऐसे बहुत सारे श्लोक आते हैं जहाँ पे बताते हैं कि जो भागवत कथा रेगुलरली सुनते हैं, जो क्लास रेगुलरली सुनते हैं, शिप्रम बहुत ही जल्दी कृष्णा उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। जब हम कथा सुनते हैं तो कृष्णा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और क्या करते हैं, हृदय में प्रवेश करके अपनी जगह वे खुद बना लेते हैं, क्योंकि हमारा हृदय तो बहुत गंदा होता है, वहाँ पर बुरी स्मेल आती है, सब जगह कचरा पड़ा रहता है, तो इसलिए वे खुद ही झाड़ू लेते हैं, पूरी जगह को साफ करते हैं और अपना स्थान बना लेते हैं, फिर वहां पे बैठ जाते हैं। तो कम से कम पहले सफाई वो करने के लिए तैयार है, झाड़ू भी लगाने के लिए तैयार है, लेकिन अंदर भेजना तो पड़ेगा ना, हम भेजने के लिए भी तैयार नहीं तो बेचारे करेंगे क्या, अंदर जाने की जगह तो देनी चाहिए। तो जब हम कथा सुनते हैं तो कान से जो है भगवान हमारे हृदय के अंदर में चले आते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कोट कर रहे हैं श्लोक का, नित्यम भागवत सेवया, जो नित्यम भागवत सुनते भी है और जो नॉट ओनली बुक भागवत, जो एक्चुअल भागवत है, भक्त है, उनकी सेवा भी जो करते हैं क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उनके हृदय में जो भी अभद्र है, अनर्थ है, वो सारा नष्ट हो जाता है, उनका हृदय पवित्र हो जाता है। और यहाँ पे सारे श्लोकों का बस आसपास यही मतलब है कि क्या होता है सुनने से। सी हमारे जीवन में दो ही प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है इच्छा और दूसरा प्रॉब्लम है शंका। बहुत सारे डाउट्स आते हैं हमें, इच्छा आती है मन के वजह से, शंका आती है बुद्धि के वजह से। ये मन और बुद्धि दोनों मिलके हमें तंग करते रहती है। कभी कभी हमें इच्छा नहीं होती है सेवा करने के लिए, कभी कभी शंका बहुत ज़्यादा आ जाती है, ये क्यों करूँ, ऐसा क्यों करूँ, वैसा क्यों करूँ, अभी क्यों करूँ, तभी क्यों नहीं, इसने क्यों कहा, कितनी सारी प्रॉब्लम। लेकिन जब हम भागवत कथा सुनते हैं तो धीरे धीरे ये शंकाएँ भी मिट जाती है और इच्छाएँ भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे कि जो डिजायर, जो हैंकरिंग होता है, भागवत कथा सुनने से ठीक हो जाता है, रजस तमस गुण से भी हम परे हो जाते हैं और मुक्ति की ओर हम चल पड़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे। रजस तमोहाते तबे पाइबे निस्तार, रजस तमस होते तबे पाइबे निस्तार, हृदय रभद्र साते गुचीबे तहार, हृदय रभद्र साथे गुची बेतहार, बस इसी बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि ये जो तमस है, रजस है, ये जो सारी इनऑस्पिशियस थिंग्स है हमारे हृदय में, जब हम भागवत कथा सुनते हैं तो धीरे धीरे हृदय हमारा साफ हो जाता है। नेक्स्ट, कि कोरे बुझावो कथा बारोसे चाही, कि कोरे बुझावो कथा बारो शूद्र अमी दीनहीन कोनो शक्ति नाही, ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का मैसेज है मैं उसे कैसे दूंगा, मैं अनक्वालिफाइड हूँ, मैं हीन हूँ, दीन हूँ, मैं कैसे उनको दे सकता हूँ, इसलिए आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। कोनो शक्ति नाई, मुझ में कोई शक्ति नहीं है भगवान, बस आप ही करवा सकते हो। यहाँ पे बस प्रभुपा जी अपना विनय विनम्र स्वभाव हमें बता रहे हैं कि कितना एक भक्त को भगवान के ऊपर में जो ग्रैटिट्यूड है, विश्वास है, कर्ता भाव नहीं है और प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। प्रभुपा जी बहुत बार अपने शिष्यों से भी कहते थे कि मेरे शिष्य सेवा तो अच्छे से कर रहे हैं लेकिन भगवान से प्रार्थना करने में कच्चे हैं, माया से डरते नहीं हैं और भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना चाहिए, हर वक्त भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। बस आप कर सकते हैं, आप करवा सकते हैं, आप कीजिए, दया करिए। अथाच एने चो प्रभु कथा बोली बारे, अथाच एने चो प्रभु कथा बोली जे तुमार इच्छा प्रभु करो एई बारे, जे तुमारी इच्छा प्रभु करो एई बारे, बोले अथाचा एने छो प्रभु कथा बोली बारे, आप लेके तो आए हो आपके बारे में कथा, आपका कथा कथा आपकी जो बातें हैं सबको बताने के लिए बोलूंगा, लेकिन उसको आप सक्सेस करेंगे अनसक्सेस करेंगे वो मैंने आपके ऊपर में छोड़ दिया, जे तुम्हारा इच्छा मैंने आपके ऊपर में छोड़ दिया। अखिल जगत गुरु बचन से आमार, अखिल जगत गुरु न से आमार, अलंकृत कोरी बार क्षमता तुमार, अखिल जगत गुरु बचन से आमार, अलंकृत कोरी बार क्षमता तुमार, यहाँ पे बोल रहे हैं, बोल रहे कृष्ण अखिल जगत गुरु, आप तो पूरे जगत के गुरु है, इसलिए मैं सिर्फ आप जो बोलते हैं उसको बस तोते के जैसे रिपीट करने वाला हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो मेरी वाणी अलंकृत बना दो, अलंकृत माने ऐसी बना दो जैसी लोगों को समझ में आए। तो बस यही मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरी वाणी ऐसे बनाओ जैसे दूसरों को समझ में आए।
तब कृपा होइले मोरा कथा सुधा होइबे, सुनिया सवार शोक दुख जे गुचीबे,
बोले तब कृपा होले मोरा कथा शुद्ध होबे। अगर आपकी कृपा होगी तो मेरी जो बात, मैं जो बात कर रहा हूँ वो शुद्ध होगा, प्योर होगा, मेरे वाणी में शक्ति आएगी, लोग मेरी वाणी से आनंद पाएंगे और मेरी वाणी सुनने से उनके हृदय में जो शोक है दुख है वो सारा मिट जाएगा। तो अगर आप कृपा करेंगे तो यहाँ पे बोले आई एम श्योर, मैं मुझे पक्का विश्वास है अगर आपकी कृपा होगी तो। हम ये श्लोक नहीं बोलते हैं, मुखम करोति वाचालम पंगु लंगायते गिरम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम। अगर गुरु की कृपा होती है तो जिसको बोलना नहीं आता है वो बोलने लगता है, जिसको चलना नहीं आता है वो पहाड़ चल सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आप तो जगत गुरु हो, आपकी कृपा होगी तो मेरी वाणी ऐसी हो जाएगी, लोगों को समझ में आएगी, शुद्ध हो जाएगी, उनके दिल को छुएगी और उनके दिल में जो दुख है शोक है उससे उनको मुक्त करेगी। आई एम श्योर, मैं पक्का मुझे विश्वास है आपकी कृपा से कुछ भी हो सकता है।
आनिया चो जदी प्रभु अमर न चाहते, जदी प्रभु अमर न चाहते, न चाहो प्रभु न चाहो से माते, कास्थेर पुतली जोत न चाओ से माते,
यहाँ पे बोल रहे कि प्रभु भगवान को प्रभुपाद जी बोल रहे कि आप तो मुझे यहाँ नचाने के लिए लेके आए हो, जिस तरह से पपेट होती है डॉल होती है उस तरह से आप जैसे चाहो, कास्तेर पुतली, मैं तो एक पुतला हूँ बस, आप मुझे जैसे नचाओगे मैं नाचूंगा, आप मुझे नचाने के लिए तो यहाँ लेके आए हो। तो कितना प्रेम से जो है भगवान को बोले कि बस मैं आपके हाथ का पुतली हूँ, मुझे आप जैसे चाहो वैसे नचाओ। और फिर नाचा भी, प्रभुपाद जी ने ऐसे नाचा कि पूरा विदेश हिल गया, पूरा दुनिया हिल गई, पूरी भौतिक दुनिया हिल गई, ऐसा प्रभुपाद जी ने जो है नाच किया और सबको नचाया भी। उसके बाद बोलते हैं लास्ट स्टैंजा,
भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो,
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने नाम को लेके बोल रहे हैं कि मेरा नाम है भक्ति वेदांत, लेकिन ना मुझ में भक्ति है ना मेरे पास कोई वेद का ज्ञान है, मेरा ये जो नाम दिया हुआ है अगर आप चाहते हो उसको सार्थक करना तो करो, आपकी इच्छा है। तो कितनी विनम्र भाव से प्रभुपाद जी बोले कि ना मुझ में भक्ति है ना मुझ में ज्ञान है, लेकिन मुझे इतना बड़ा नाम दे दिया है भक्ति वेदांत, तो अगर आप चाहो तो मेरे नाम को सार्थक करो। तो कितनी सुंदर बात, हाँ, जो नाम होता है इंसान का उस इंसान के गुण को प्रकट करता है ना। कोई सुंदर होता है तो हम उसको सुंदर ही नाम देते हैं, किसी की आंखें सुंदर होती है तो उसको हम ऐसे, तो हमारे गुण के अनुसार ही नाम होता है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरा नाम दिया हुआ है भक्ति वेदांत और इस नाम को आप ही सार्थक कर सकते हो, मुझ में ना भक्ति है ना वेदों का ज्ञान है, लेकिन अगर आपकी कृपा होगी तो यहाँ पे सब भक्त बन जाएगा। तो बस यही प्रभुपाद जी का ये है कि बड़ो कृपा कई लो कृष्ण ये अधा मेरे पति, मुझ पे आपने इतनी कृपा की है, मुझे यहाँ पे लेके आए हो, मुझे आप अपना इंस्ट्रूमेंट बनाओ, यहाँ जो रजस तमस में ढके हुए जीव है उनको आप मुक्त करो, उनका हृदय शुद्ध करो, आप उनको माया से बचाओ, अपने क्लचेस में आप उनको ले लो, मेरी वाणी शुद्ध करो, मेरा उपयोग करो, मैं आपका नाम का, आपके गुण का, आपके कथा का प्रचार कर सको। तो बहुत ही सुंदर सुंदर कविता यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। सो इन्होंने बहुत सुंदर, दीपक प्रभु ने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है, आइए बैठिए। क्रेडिट मेंटालिटी से हम कैसे मुक्त हो? एक साधारण मेंटालिटी, हमें क्रेडिट तो चाहिए। एक ऑफकोर्स इसके बहुत सारे टिप्स हो सकते हैं, इमीडिएटली जो मेरे माइंड में आ रहा है, बाय ट्रांसफरिंग क्रेडिट, हम अगर ट्रांसफर कर दे क्रेडिट, हम क्रेडिट लेना, इट्स ए नेचुरल थिंग कि हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो हमें उसका अप्रिशिएशन चाहिए। तो किससे अप्रिशिएशन चाहिए? बाहर के लोगों से अप्रिशिएशन चाहिए, क्योंकि हम लोगों से कनेक्टेड है, हम सोचते हैं कि अगर वो अप्रिशिएट करते हैं तो सक्सेसफुल है, ये हमारी मेंटालिटी है। इसलिए देखते हैं हम फेसबुक में भी लोग वेट करते हैं कि लाइक आ जाए, क्योंकि हमारा होल मेंटालिटी होता है कि व्हाट पीपल से अबाउट अस, आर दे हैप्पी और नॉट। जब मैं बार बार हिंदी में बोलती हूँ ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि हम लोगों से बहुत कनेक्टेड है, हमारी पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द है, हम सोचते हैं अगर वो हमें अप्रिशिएट करते तो एवरीथिंग इज सक्सेसफुल। उसका मतलब हमारा कनेक्शन कृष्ण से वीक है, क्योंकि हम बाहर लोगों से अपेक्षा करते हैं प्रेम की, प्रशंसा की, आनंद की। लेकिन जब हमारा कनेक्शन कृष्ण से हो जाता है, तब हमें इतना रेसिप्रोकेशन कृष्ण से ही मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि हमें बाहर के अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से कोई अमीर आदमी होता है, अगर उसको 10 रुपए की लॉटरी टिकट निकलती है तो उसको कोई आनंद नहीं आता, क्योंकि उस समय मैं क्या करूँ 10 रुपए का, मेरे बैंक में 1 करोड़ पड़ा हुआ है। क्योंकि वो अमीर है, उसे वो 10 रुपए आनंद नहीं देता है। जो कृष्ण से कनेक्टेड होता है हायर वे, उसे दूसरों की अप्रिशिएशन या क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी कृष्ण से कनेक्टेड है। तो जब हमारा पूरा अस्तित्व दूसरों पे निर्भर है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसका मतलब हमको कृष्ण पे प्रीति अभी तक नहीं बढ़ी है। हमें अभी भी हमारी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस यहाँ संसार के लोग ही है, अभी भी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मटेरियल वर्ल्ड ही है, अभी भी हमने हमारा सोर्स नहीं बदला है। हमें आनंद चाहिए कृष्ण से, अप्रिशिएशन चाहिए कृष्ण से, जो भी है हमें कृष्ण से मिलना चाहिए। लेकिन इमीडिएटली इंस्टेंटली तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हम इस प्रोसेस में हैं। बट स्लोली स्लोली हम ये कर सकते हैं कि सबसे अप्रिशिएशन नहीं एक्सपेक्ट करके अब धीरे धीरे सिर्फ गुरु तक लिमिट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे गुरु से कृष्ण की ओर जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारा स्कैटर्ड है, हमें सबसे चाहिए अप्रिशिएशन। जैसे बहुत बार बच्चे भी, जैसे मैं देखती हूँ कॉलेज में यंगस्टर्स वगैरह, हमेशा फेसबुक में अप्रिशिएशन कितने आए वेट करते हैं फॉर नंबर्स। मैं बहुत बार मेरे प्रवचन में बोलती हूँ कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मेनी पीपल लाइक्ड योर पोस्ट, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हु लाइक्ड योर पोस्ट, हु लाइक्ड इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लाइक किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज ऑफ नाउ अभी हम नंबर्स में स्कैटर्ड है, कितने लोग, इज एवरीबॉडी ओके विथ मी और नॉट, पर धीरे धीरे अभी उस नंबर्स को बाहर करके हु लाइक दैट पर्सन, हाउ इंपॉर्टेंट, वो उसकी स्पिरिचुअल ये क्या, जैसे हमारे शिक्षा गुरुज है या दीक्षा गुरुज है या हमारे सीनियर वैष्णवज है। तो धीरे धीरे अब जो पूरी दुनिया से चाहिए, पहले अब धीरे धीरे उन तक लेके आ जाइए, और फिर धीरे धीरे उनसे लेके कृष्ण की ओर जाएगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्योंकि हम जिस तरह के ह्यूमन बीइंग है, बिना अप्रिशिएशन के हम काम नहीं कर पाते। लेकिन ये प्रोसेस अब इमीडिएटली तो कुछ स्टॉप नहीं हो सकता है, जिस तरह से फैन भी बंद करो तो 5 से 4, 4 से 3, 2, 1 आएगा। तो इमीडिएटली अब ये लेक्चर सुनने के बाद से कल से मैं क्रेडिट लेने की चांस में कोशिश नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे कम से कम हम नंबर कम कर सकते हैं, अब इतने लोगों की अप्रिशिएशन जरूर नहीं, बस कम से कम ये अप्रिशिएट कर दे तो चलेगा। और फिर धीरे धीरे हम उस पर्सन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और अगर वो पर्सन कृष्ण से नाइसली कनेक्टेड है तो धीरे धीरे वी विल गो इन द प्रॉपर डायरेक्शन। तो ये एक चीज़ हो सकता है क्रेडिट नहीं लेने का। और फिर कभी कभी मैकेनिकल भी उसको कोशिश करना है, जैसे हर बार क्रेडिट अगर हमें लेने का इच्छा भी हो तो उसको हमेशा सीनियर्स की ओर, जैसे हमारे इस्कॉन में हमारा जो लैंग्वेज होता है, वोकैबुलरी होता है, वी आर सो केयरफुल, ऑल बिकॉज ऑफ कृष्णज मर्सी। इवन हम सुबह शाम जो आरती भी करते हैं, आरती के बाद हम क्या करते हैं, जय ध्वनि, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज, हम याद करते हैं। तो उसको भी कंटिन्यूसली जो ये हमारे ये है ऑल ग्लोरीज, आप देखिए किसी, कभी कभी मैं देखती हूँ बड़े लोगों का, किसी पॉलिटिशियन का या क्रिकेटर का, ये कभी कभी आप किसी का इंटरव्यू भी लेते हैं तो सबसे पहले उनका होता है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कृष्णा और व्हाटएवर, या जो भी उनके भगवान है। लेकिन कुछ लोग का ऐसा मेंटालिटी नहीं है, आप कुछ भी बोलो तो दे विल टेक क्रेडिट। उसका मतलब इन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की है, हो सकता है लिटरली उनको ऐसा ना हो, वो मैकेनिकल भी बोलते हैं, ऐसा हो सकता है। जैसे बहुत लोगों का मैंने मैं देखते रहती हूँ, बोलते नहीं नहीं भगवान की कृपा से हुआ। हो सकता है वो लिटरली इतने प्योर लेवल पे नहीं है, बट कम से कम उन्होंने अभी वर्ड्स में ये प्रैक्टिस कर लिया ना, टू एवरीथिंग दे से इट्स कृष्णस मर्सी, इफ कृष्णा सो डिजायर, इफ कृष्णा वांट्स, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ कृष्णा, देन स्लोली स्लोली वन फाइन डे इट विल एक्चुअली, यू विल एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग इट। बट कम से कम पहले उसको वाक्य में तो लेके आओ। तो कम से कम इस तरह से हम शुरू कर सकते हैं कि हम अब से जो भी काम करेंगे उसका सक्सेस या जो भी हो, इमीडिएटली हमें बोलना चाहिए थैंक यू कृष्णा, इट्स बिकॉज ऑफ कृष्णा। तो बोलते 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 शायद एक दिन हम लिटरली उसको लेने लगेंगे कि हाँ इट्स बिकॉज ऑफ कृष्णा। तो ऐसा हम मैकेनिकली शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे वो दिल से भी निकलेगा। और ग्रैटिट्यूड भी अगर हम रखें हर चीज का, अगर हम भगवान को ग्रैटिट्यूड दे तो भी धीरे धीरे हमारी क्रेडिट टेकिंग मेंटालिटी कम हो सकती है। क्रेडिट लेना मतलब हमारी थिंकिंग क्या है एट दैट मोमेंट दैट आई एम द डूअर, करेक्ट? क्रेडिट हम क्यों लेना चाहते हैं? बिकॉज हम सोचते हैं कि मैं डूअर हूँ, उसका मतलब ये डूअरशिप छोड़ना है, उसका मतलब डूअर भगवान को मानना है, भगवान को डूअर मानना है मतलब भगवान को धन्यवाद देना है और भगवान की तरफ ग्रैटिट्यूड दिखाना है और हर चीज़ में ऐसे सोचना है कि भगवान ने करवाया, भगवान ने करवाया, भगवान ने करवाया मतलब भगवान को थैंक यू बोलोगे मतलब भगवान ने करवाया, ये एक रिलेटेड है। तो ये भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हर चीज़ में भगवान को थैंक्स बोलना, उनको ग्रैटिट्यूड दिखाना। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारी क्रेडिट टेकिंग मेंटालिटी कम हो सकती है।